أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تربیت ان دا 21st سینچری میں ہم کس سیکشن میں بات کر رہے ہیں؟ ہم سکون اور آرامش دیداری میں بات کر رہے ہیں، یعنی جب میاں بیوی ایک دوسرے کو جب پہلی بار دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ یعنی شادی کے بعد بھی، جب مثلا میاں آفس سے آتا ہے یا بیوی کام سے جاتی ہے اور واپس گھر پہ آتی ہے اور وہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اس دیکھنے سے دونوں کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک آرامش کا احساس ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آیت قرآنی بھی موجود ہے، اور وہی سورہ روم آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اب اسی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جس کو فارسی میں آرامش کہتے ہیں، سکون، اطمینان تو نہیں کہیں گے، اس آرامش اور سکون کو ہم نے تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلا حصہ کیا تھا؟ آرامش دیداری، جس کے بارے میں ہم چند سیشن سے بات کر رہے ہیں. آج ہم اس آرامش دیداری کو ریپ اپ کریں گے اور پھر نیکسٹ سیشن سے آرامش کلامی کے بارے میں بات کریں گے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس بات چیت کرنے میں ان کو سکون محسوس ہوتا ہے. آرامش دیداری کے اندر دیکھیں، یہ سب بحث کیا اور یہ تربیت کے بارے میں، بچوں کی تربیت سے پہلے ماں باپ پہلے اپنی تربیت کریں. جب تک اپنی تربیت نہیں کریں گے، بچوں کی تربیت کرنا پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے. ایک پوائنٹ جو آرامش دیداری کے اندر باقی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بحث ہے اسلام کے اندر، وہ ہے آداب. اوکے، آداب از ڈفرینٹ فرام اخلاق. اخلاق اور آداب میں فرق ہے. اب کیا فرق ہے، وہ ایک تھیوریٹیکل بحث ہے، اور ایک اس کی پریکٹیکل اینڈ تھیوریٹیکل بحث میں ہم کبھی کسی اور فرصت میں جائیں گے، لیکن ایک جو ہم نے مثال کے طور پر کتابوں میں بھی پڑھا ہے یا علماء کو بھی سنا ہے کہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا کھانے کے آداب، غذا کھانے کے آداب، انسان جب بیٹھتا ہے تو ادب سے بیٹھے. اوکے، جب کسی کے گھر مہمان کے عنوان سے جاتا ہے، دعوت میں جاتا ہے، تو ادب کے ساتھ جائے. گفتگو کے آداب، سننے کے آداب، دیکھنے کے آداب، یہ سارے آداب اسلام کے اندر ائمہ اطہار علیہم السلام کی احادیث میں اور ان کی سیرت میں موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، میاں بیوی کو بھی کچھ آداب اپنانے چاہیے. اب آپ دیکھیں کس طرح جب رشتے کا ٹائم آتا ہے اور جب ایک لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے، اور جب لڑکا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ لڑکا کس قدر آداب کے ساتھ جاتا ہے، آداب کے ساتھ اپنے ساس سسر، ہونے والے ساس سسر کے ساتھ پیش آتا ہے، اور بالکل سوٹڈ بوٹڈ بہترین انداز میں بیٹھتا ہے وہاں پر، بات کرتا ہے اچھے انداز میں. اور وہ لڑکی بھی جب چائے کی اور بسکٹ کی ٹرے لے کر آتی ہے سب کو، مہمانوں کو بانٹنے کے لیے، ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، وہ بھی کس قدر آداب کے ساتھ آتی ہے اور پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اب شادی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، منگنی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی اور سب کچھ ہو گیا، سیریمنیز ایوری تھنگ ڈن، شادی کے شروع کے 2-3 مہینے بہت ہی اچھے گزرتے ہیں، بہت ہی آداب کے ساتھ گزرتے ہیں. صحیح، مثال کے طور پر ہسبینڈ جاتا ہے بیوی کو ہوٹل میں ڈیٹ کے لیے جاتا ہے، اور البتہ شادی کے بعد کی جو ڈیٹنگ ہے، اینڈ بہترین، یعنی سب کچھ اچھا جا رہا ہے، سب کچھ مورلز کے اندر، ایتھکس کے اندر، آداب کے اندر ساری زندگی شروع ہوئی ہے. یعنی زندگی کا آغاز آداب کے ساتھ ہوا ہے، آداب اسلامی کے ساتھ ہوا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ زندگی، اس دیواجی زندگی روٹین کا شکار ہو جاتی ہے، عادت کا شکار ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں 6 مہینے بعد یہی میاں، یہی شوہر بے ادب ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کیوں مسائل پیش آتے ہیں؟ کیونکہ پہلے سے تربیت نہیں ہوتی ہے، پہلے سے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں شادی کے بعد، البتہ پاکستان میں تو یہ پرابلم ہے کہ شادی کے بعد بھی کوئی ٹریننگ سیشنز نہیں ہوتے، शादी से पहले तो दूर की बात है, ठीक है। अब 6 महीने बाद क्या होता है, मसलन शौहर ऑफिस से घर में आता है और देखता है सारा घर बिखरा पड़ा होता है, पूरा घर जो है बेमुनज़्ज़म होता है, कपड़े यहाँ लटके हुए हैं, कपड़े जो है तय नहीं हुए होते और ज़मीन पे पड़े हुए, सोफ़े पे पड़े हुए, और बीवी भी अजीब व गरीब हालत में है, और मियाँ भी जो है वो आता है ऑफिस से और बिल्कुल फटे कपड़े पहनता है, ठीक है। यानी देखें ये एक अजीब माहौल बन जाता है, एक कहाँ से आगाज़ हुआ था, आदाब वाले माहौल से आगाज़ हुआ था ये इज़दिवाजी ज़िंदगी, और अब 6 महीने बाद मुकम्मल लाइफ जो है बेअदबी के साथ इंसान जो है ज़िंदगी का मुशाहिदा करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और जितना हमने पहले सेशंस में सारी बात की वो सारे पॉइंट्स यहाँ अप्लाई होना ज़रूरी हैं, कि बीवी को मालूम होना चाहिए कि शौहर हर चीज़ को कैसे देखता है, किस आँख से देखता है, कुलियात को देखता है, और शौहर को भी मालूम होना चाहिए कि बीवी हर चीज़ को किस एंगल से, किस ऐनक से देखती है। ये एक हमने बात पहले भी की थी और अभी भी मैंने आपके सामने तकरार की। अलबत्ता अब एक पॉइंट यहाँ पर देखें, जो आदाब के अंदर नॉर्मली रियायत नहीं की जाती है, मिसाल के तौर पर शौहर बहुत ही दीनदार है, सही है, बहुत ही मुस्तहबात को, वाजिबात तो वो माशाल्लाह बजा लाता है, नमाज टाइम पे पढ़ता है, रोज़े रखता है, लेकिन साथ साथ मुस्तहबात भी अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर अगर जोहर की नमाज के लिए 8 रकत नाफिला है, नफल नमाज जिसको कहा जाता है, नाफिला सही लफ्ज़ है, तो ये शौहर 8ों की 8 यानी रकात जो है वो पढ़ता है, सही है। रोज़ाना मिसाल के तौर पर 1 सिपारा कुरान पढ़ेगा, ये सारे मुस्तहबात है जो वो बजा लाता है। अब दूसरी तरह से बीवी वो दीनदार है, लेकिन इस शौहर की तरह इस कदर दीनदार नहीं है। अब अगर ये शौहर, आप फ़र्ज़ करें, मुस्तहबात पर इतना टाइम देता है, अब ऑफिस तो जा रहा है, ऑफिस से आने के बाद भी मुस्तहबात को टाइम दे रहा है, ख़त्मे कुरान कर रहा है और सारी सारे अज़कार और दुआएं पढ़ रहा है, तो ये बीवी क्या कहेगी? ये बीवी कहेगी यार इसको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, ही डजन हैव टाइम फॉर मी, ये मुस्तहबात को इतना ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो क्या मैं उस मुस्तहबात में शामिल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वाजिबात में शामिल हूँ। और उसका कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर शौहर के अंदर सेंस होना चाहिए कि हर मुस्तहब को बीवी के सामने बजा लाना सही नहीं है, वरना इन दी एंड, अच्छा उस तरफ से बीवियों के अंदर भी ऐसा है, बस बीवियाँ बहुत ही दीनदार होती हैं, हमेशा मुसल्ले पर ही होती है, सही है। अब शौहर सुबह नाश्ते के लिए उठा है, देख रहा नाश्ता नहीं है, बीवी मुसल्ले पर तागीबात पड़ रही है, ठीक है। या मसलन जब शौहर ऑफिस से घर पे आता है शाम 5 बजे और नमाज का टाइम करीब होता है, तो देखता है कि वो बीवी वुज़ू कर रही है, मुसल्ले पर है, कराते कुरान कर रही है, ठीक है, माशाल्लाह काम बहुत अच्छा है, इबादत कर रही है, लेकिन सवाब भी है, लेकिन इस बीवी को चाहिए कि यहाँ पर शौहर के लिए टाइम निकाले, अपने मुस्तहबात को कम करे। और अगर बीवी बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा जीरक हो, इंटेलिजेंट हो, तो यहाँ पर उसको अपना सेंस काम में लाना चाहिए, वो ये कि सारे मुस्तहबात, सारी दुआएं, सारा कुरान जो है वो अपने शौहर के सामने ना पढ़े, क्योंकि शौहर इतना दीनदार नहीं है, शौहर को चाहिए कि वो बीवी मुझे टाइम दे, और ये उसका हक है, ये हुकूक के शौहर में से है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इफरात और तफरीत से लो इन दोनों ने काम किया, मिसाल के तौर पर बीवी इफरात का शिकार हो रही है और बहुत ज़्यादा मुस्तहबात बजा ला रही है, तो इन दी एंड ये शौहर भी जो है दीन से नफरत करना लगेगा, करने लगेगा। और अगर शौहर इस तरफ से बहुत ज़्यादा मुस्तहबात को बजा लाना उसने शुरू किया और बीवी इस कदर जो है, बीवी फ़कत वाजिबात पर इक्तफा करती है, तो अगर ये बीवी देखेगी कि मेरा शौहर इस कदर मुस्तहबात को टाइम देता है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो इन दी एंड खुदा ना खासा ये बीवी दीन से भी शायद मुतनफ़िर हो जाए, तो इसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत दकीक बहस है, बहुत जुज़ी तरीन मबाहिस में से है, और शौहर और बीवी को एक दकीक नज़र रखनी चाहिए हर चीज़ के हवाले से, कि मेरा बिहेवियर, मेरी जो मेरा जो काम है, मेरे जो आमाल हैं, मेरा एक एक अमल जो है मेरी बीवी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या असर दिखा रहा है, और बीवी को भी देखना चाहिए कि मेरा हर काम जो है शौहर के ऊपर क्या असर छोड़ रहा है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए बीवियों को स्पेशली, वो क्या है, वो ये कि शौहर जब घर पे आता है तो वो घर को जब देखता है तो वो एक एरियल व्यू के साथ देखता है। सही है, एरियल व्यू कैसा होता है, मिसाल के तौर जब एक आप एरोप्लेन में होते हैं, हवाई जहाज़ में होते हैं, और जैसे ही हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है तो आपको ऊपर से एक पूरा नक्शा नज़र आता है उस शहर का, उसको कहते हैं एरियल व्यू। शौहर जब घर में वारिद होता है तो वो एरियल व्यू से पूरे घर को देखता है, मुमकिन है वो लाशऊर में देख रहा हो, ठीक है, वो ये देख वो फौरन नतीजा लेगा कि घर आया मुनज्जम और ऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गेनाइज नहीं है, और वह फौरन नतीजा लेगा। अगर ऑर्गेनाइज है तो वो तारीफ करेगा फौरन बीवी की कि माशाल्लाह कितना बेहतरीन घर को इसने सजा के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर बीवी को पहले से मालूम होना चाहिए कि मेरा शौहर मिसाल के तौर पर 6 बजे घर पे आएगा तो 5 बजे तक मैं अपना घर मुकम्मल साफ करके ऑर्गेनाइज्ड करके रखूं, क्यों, क्योंकि शौहर आके फौरन जो है वो एक डिसीशन लेता है, मुमकिन है ना कहे, इजहार ना करे कि माशाल्लाह क्या घर सजाया तुमने, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये उसके अंदर ये मैसेजेस आते हैं, उसके माइंड में ये मैसेजेस इनबॉक्स में आते हैं, ठीक है, कि घर अच्छा है या घर अच्छा नहीं है। बस घर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि शौहर, मैंने पहले कहा था कि शौहर की निगाह साइकोलॉजी क्या है, कि वो एक मर्द जो होता है वो हर चीज़ को कुल्ली नज़र से देखता है, कुल्लियात को देखता है, एरियल व्यू में देखता है, लेकिन एक खातून हर चीज़ को जुज़ियात में देखती है। सही, लिहाजा यहाँ पर मर्द और औरत को एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझ कर मुख्तलिफ बिहेवियर्स को अपनाना चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आरामिश कलामी के बारे में बात करेंगे, कि ये एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम बन चुकी है आज की टेक्नोलॉजिकल और मीडियास्टिक लाइफ के अंदर, ज़माने के अंदर, कि जन और शौहर, बीवी और शौहर जो है वो उनकी आपस में जो गुफ्तगू है उसका लेवल कम हो चुका है। सही है, उसका रेशियो कम हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे अगर आपके पास भी इंशाल्लाह कोई इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है अपनी सोसाइटी के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से, कि और एक औरत और एक बीवी और शौहर दिन भर कितनी गुफ्तगू करते हैं आपस में। सही है, ये एक मसला है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है घर के अंदर सुकून को ईजाद करने में, लितस्कुनु इलैहा को ईजाद करने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।